ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाप दादा की आज की मुरली है याद। बाबा कहते हैं तुम बच्चों की याद बाबा की कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए हमारी याद। बाबा कहते हैं जैसे आशिक और माशूक, आशिक और माशूक कैसे एक दो को याद करते हैं। हर कार्य करते हुए आशिक के सामने माशूक आ जाता है, कोई भी कार्य करती हो वो माशूक उसके सामने आ जाता है। रोटी बनाती हो तो भी वो आशिक वो माशूक को याद करती है, वो माशूक सामने आ जाता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी भी याद ऐसी होनी चाहिए। लेकिन क्यों लेकिन कहना पड़ता बाबा को, लेकिन कई बच्चे बड़े अलबेले हैं। कैसे अलबेले हैं, कहते हैं मेरी याद तो है ही, मैं तो बाबा का हूँ, मैं बाबा की हूँ, मुझे तो याद है ही, तो है ही है। ये कहना भी जैसे अलबेलापन है। खास उस दिन भी बाबा ने कहा पर्पसली जानबूझकर भी याद में बैठना होता है। और बाबा कंपेयर करते हैं कि बांधेलियों की याद कैसी होती है, वो तड़पती है, तो बांधेलियों की याद की तरह तड़पन चाहिए अंदर में कि हम बाबा को याद करें। लेकिन कई छुटेले हैं, कोई बंधन नहीं है, इसलिए अलबेले हो जाते हैं। हाँ, छुटेले हैं, अलबेले हैं, तो तड़पन होनी चाहिए। और मिसाल क्या दिया है बाबा ने, जैसे बच्चा गर्भ में होता है, अब वो तड़पन है उसको, मैं बाहर निकलूं। हाँ, माँ को भी कितना कष्ट होता है ना, तो क्योंकि उस समय बच्चे को ये तड़पन है, बस अब मैं बाहर निकलूं, तो बाहर निकलूं, बंधन से मुक्त हो जाऊं, ये गर्भ में बच्चे को तड़पन होती है। तो बाबा भी देखते हैं कि जो हमारी बांधेली बच्चियां हैं उनको वो तड़पन है। बाबा मैं कैसे आपसे मिलूं, कैसे छूटूं, पर जो छुटेले हैं वो अलबेले हैं, तो देखो कैसी विडंबना है। तो आज बाबा ने इस पर विशेष ध्यान खिंचवाया है। सुनते हैं बाबा के माँ वाक्य। आज 7/4/2026 है। मीठे बच्चे, जब भी समय मिले तो एकांत में बैठ सच्चे माशूक को याद करो, क्योंकि याद से ही स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बिना याद के स्वर्ग की बादशाही कैसे मिलेगी? हाँ, क्योंकि याद से ही स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। प्रश्न है, तो बाप मिला है तो कौन सा अलबेलापन समाप्त हो जाना चाहिए? बाबा मिला है तो कौन सा अलबेलापन समाप्त हो जाना चाहिए? उत्तर है, कई बच्चे अलबेले हो कहते हैं हम तो बाबा के हैं ही, हाँ इसीलिए हम तो है ही, खास याद में बैठे क्या जरूरत है, हम तो बाबा के हैं ही। याद की मेहनत नहीं करते, घड़ी घड़ी याद भूल जाती है, यही है अलबेलापन। बाबा कहते बच्चे अगर याद में रहो तो अंदर में स्थाई खुशी रहेगी। कोई कहते हम तो याद में है ही, परंतु वो स्थाई खुशी नहीं है, तो कैसे समझेंगे कि याद में है ये। तो अगर याद में रहो तो अंदर में स्थायी खुशी रहेगी, किसी भी प्रकार का घुटका नहीं आएगा। घुटका आता है ना अंदर, कोई चिंता है, कोई ऐसी परेशानी है, कोई ऐसा उलझन है, तो इसको बाबा कहते घुटका आना। तो किसी भी प्रकार का घुटका नहीं आएगा, बाबा की याद है तो हर वक्त तो यही सोचेंगे ना, चलो कोई बात नहीं, बाबा बैठा है, बाबा ठीक कर देगा, मैं बाबा की याद में रहूं, बाबा के हाथ में छोड़ दो, छोड़ दो, बाबा को दे दो अपना बोझ। लेकिन याद है ही नहीं तो घुटका खाते अंदर ही अंदर चिंताओं में। तो किसी भी प्रकार का घुटका नहीं आएगा। जैसे बांधेलियां याद में तड़पती है, दिन रात याद करती है, ऐसे तुम्हें भी निरंतर याद रहनी चाहिए। तड़पन हो सदा, बस मैं बैठ जाऊं बाबा की याद में। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूं, नई दुनिया बनाकर लाई हूं। ओम शांति। बाप ने बच्चों को समझाया है, तुम भी कहते हो ओम शांति और बाप भी कहते हैं ओम शांति, अर्थात तुम आत्माएं शांत स्वरूप हो। जब हम कहते हैं ओम शांति, माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, ये मैं समझती हूँ। और फिर जब बाबा कहते हैं ओम शांति, तो बाबा भी तो शांत स्वरूप है। आत्मा का स्वधर्म शांति है, परमात्मा का भी स्वधर्म शांति है। तुम भी शांति धाम में रहने वाले हो और बाप कहते हैं मैं भी वहां का रहने वाला हूँ। तुम बच्चे पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। दोनों का स्वधर्म शांत है, दोनों ही एक ही धाम शांति धाम में रहने वाले हैं। लेकिन अंतर क्या है, हम आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है, बाबा नहीं आते। तुम बच्चे पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। मैं इस रथ में प्रवेश करता हूँ, ये मेरा रथ है, ब्रह्मा बाबा मेरा रथ है। शंकर से अगर पूछेंगे, हंसी की बात है, हाँ शंकर से अगर कोई जाके पूछे, अब पूछ तो नहीं सकते हैं, कौन सूक्ष्म वतन में जाएगा और शंकर से पूछेगा। पर मान लो शंकर से कोई पूछे कि शंकर से कोई पूछे, पूछ तो नहीं सकते, परंतु समझो, मान लो कि सूक्ष्म वतन में जाकर कोई शंकर से पूछे, तो कहेगा ना कि ये मेरा सूक्ष्म शरीर है। शंकर भी कहेगा मेरा शरीर है, तो शिव बाबा तो नहीं कहेगा मेरा शरीर है, क्योंकि उनको शरीर है ही नहीं। शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है, तो वो भी कहेगा ये सूक्ष्म शरीर हमारा है। अब शिव बाबा कहते हैं हमारा तो शरीर है ही नहीं, ये हमने उधार लिया है, ब्रह्मा का शरीर उधार लिया है, क्योंकि मुझे भी कर्म इंद्रियों का आधार चाहिए। तो पहली पहली मुख्य बात समझानी है कि पतित पावन ज्ञान का सागर श्री कृष्ण नहीं है। वो पॉइंट पूरी हुई, क्योंकि इस साथ में मेल है, कैसे दोनों को बाबा ने मिलाया है इस पॉइंट को, कि कैसे श्री कृष्ण तो कहेगा मेरा शरीर है, अब शिव बाबा तो कहता मेरा शरीर है ही नहीं, तो गीता का भगवान कौन हुआ। तो बाबा कहते पहली पहली मुख्य बात समझानी है कि पतित पावन ज्ञान का सागर श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण सर्व आत्माओं को पतित से पावन नहीं बनाते हैं। शिव बाबा का कर्तव्य ही अलग है, श्री कृष्ण का वो कर्तव्य नहीं है। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण तो सर्व आत्माओं को पतित से पावन नहीं बनाते हैं, वो तो आकर पावन दुनिया में राज्य करते हैं, पहला पहला प्रिंस बनते हैं, और फिर वो पहला प्रिंस बनता है, फिर वो महाराजा बनते हैं। उनमें भी ये ज्ञान नहीं है, रचना का ज्ञान तो रचयिता नहीं होगा ना। श्री कृष्ण को तो रचना कहा जाता है, रचयिता बाप ही आकर ज्ञान देते हैं। अभी बाप रच रहे हैं, है ना, नई दुनिया रच रहे हैं, उसके लिए ज्ञान दे रहे हैं। अब बाप रच रहे हैं, कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं। कहा भी जाता है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना, नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आए, ब्राह्मण कहाँ से आए। ब्राह्मण तो यही कहेंगे ना, ब्रह्मा की हम मुख संतान है, तो ब्राह्मण कहाँ से आए, ब्रह्मा के मुख से आए। नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आए, सूक्ष्म वतन वाला ब्रह्मा कोई दूसरा नहीं है, यही ब्रह्मा साकार सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा बनता है। ये रास कैसे बाबा ने खोला था यज्ञ में गुलजार दादी के द्वारा, कि यही ब्रह्मा फिर सूक्ष्म वतन वासी फरिश्ता ब्रह्मा संपूर्ण बनता है। सूक्ष्म वतन वाला ब्रह्मा कोई दूसरा नहीं है, ऊपर वाला सो नीचे वाला, सो ऊपर वाला, नीचे वाला ब्रह्मा सो ऊपर वाला, फिर ऊपर वाला सो नीचे वाला, एक है, एक ही है ब्रह्मा। ये नहीं कि कोई वो ब्रह्मा सूक्ष्म वतन वाला कोई दूसरा है, वो आत्मा कोई दूसरी है, एक ही है। अच्छा, विष्णु और लक्ष्मी नारायण भी एक ही बात है, विष्णु और लक्ष्मी नारायण वो भी एक ही बात है। वो कहाँ के हैं, विष्णु और लक्ष्मी नारायण कहाँ के हैं। ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, ब्रह्मा सरस्वती ही सो लक्ष्मी नारायण, फिर वो ही ब्रह्मा सरस्वती ही सो लक्ष्मी नारायण, फिर वो ही सारा कल्प 84 जन्मों के बाद आकर संगम पर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य है, उनका देवी देवता धर्म है, धर्म है उनका देवी देवता लक्ष्मी नारायण का। विष्णु को भी 4 भुजाएं दी है, ये प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है, 4 भुजा दिखाना माना प्रवृत्ति मार्ग दिखाना। भारत में शुरू से ही प्रवृत्ति मार्ग चला आता है, इसलिए विष्णु को 4 भुजाएं दी है। यहाँ है संगम पर विष्णु तो सतयुग में कहेंगे, और यहाँ है संगम पर ब्रह्मा सरस्वती। वो सरस्वती फिर एडॉप्टेड बच्ची है, इनका असुल नाम लखीराज था, ब्रह्मा बाबा का दैहिक नाम असल में लखीराज था, फिर इनका नाम ब्रह्मा रखा, किसने, शिव बाबा ने। शिव बाबा ने इसमें प्रवेश किया और राधे को अपना बनाया। पहले शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को, ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया और उनको ब्रह्मा नाम दिया, फिर राधे को एडॉप्ट किया, अपना बनाया और नाम रखा सरस्वती। मम्मा का जो लौकिक नाम था वो राधे था, तो नाम रखा सरस्वती अपना बनाकर। सरस्वती का ब्रह्मा से कोई लौकिक बाप नहीं है, सॉरी, ब्रह्मा सरस्वती का ब्रह्मा कोई लौकिक बाप नहीं है। हाँ भाई, सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, लेकिन ये सरस्वती ब्रह्मा की कोई लौकिक बेटी नहीं है। इन दोनों के लौकिक बाप तो अपने अपने थे, ब्रह्मा बाबा का भी लौकिक में बाप तो अपना था, वो तो स्कूल मास्टर था, और मम्मा के लौकिक पिता तो ज्वेलर थे। हाँ, कि अंतर था, एक तो नहीं थे पिता। इन दोनों का लौकिक बाप अपने अपने थे, अभी वो नहीं है, शरीर में नहीं है। ये शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है, तुम हो एडॉप्टेड चिल्ड्रन। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है, ब्रह्मा के मुख कमल से रचते हैं, इसलिए ब्रह्मा को भी, ब्रह्मा के मुख कमल से रचते हैं, इसीलिए ब्रह्मा भी क्या हो गया, ब्रह्मा को भी माता कहा जाता है, वैसे भी ब्रह्मा तो माँ शब्द आता है ब्रह्मा के शब्द में, इसीलिए ब्रह्मा को भी माता कहा जाता है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। अब गाते हैं ना, यहाँ ये ग्रंथ के महावाक्य है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे, गाते हैं ना। तुम ब्राह्मण आकर बालक बने हो, इसमें समझने की बुद्धि चाहिए। कैसी बुद्धि चाहिए? समझने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए, ऐसे नहीं केवल बुद्धि, बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए समझने की। कैसे वो बाप है और माँ द्वारा रचते हैं, फिर ये मेल का शरीर है तो माँ को एडॉप्ट करते हैं, वो बच्ची है बेटी है। तुम बच्चे शिव बाबा से वर्षा लेते हो, ब्रह्मा को स्वर्ग का रचयिता व ज्ञान सागर नहीं है। स्वर्ग का रचयिता शिव बाबा है, लेकिन ब्रह्मा थ्रू रचते हैं, ज्ञान सागर शिव बाबा है। तो ब्रह्मा को स्वर्ग का रचयिता व ज्ञान सागर नहीं है, ज्ञान का सागर एक ही बाप है, आत्मा का बाप ही ज्ञान का सागर है। आत्मा भी ज्ञान सागर बनती है, लेकिन आत्मा को ज्ञान सागर केवल नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? हाँ, इनको, परंतु इनको ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, क्योंकि सागर तो एक ही है, तो मास्टर कहेंगे, मास्टर ज्ञान सागर। सीधा आत्मा को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, मास्टर ज्ञान सागर, या फिर क्या कहेंगे, या फिर बाबा कहते हैं तुम सब नदियां हो, सागर नहीं हो, सागर तो एक ही है, बाकी सब है नदियां, बाकी तुम सब नदियां हो। सागर को तो अपना शरीर ही नहीं है, ज्ञान सागर को तो अपना शरीर ही नहीं है, नदियों को तो अपना शरीर है, नदियों को तो है शरीर। तुम हो ज्ञान नदियां, कलकत्ता में ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ी है, सबसे बड़ी नदी अगर है तो ब्रह्मपुत्रा नदी है। तो बाबा कहते कलकत्ता में ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ी है, क्योंकि उनका सागर से कनेक्शन है, सीधा जाकर के सागर में पड़ती है ब्रह्मपुत्रा नदी, और वह स्थान जहाँ ब्रह्मपुत्रा नदी गंगा में उससे मिल जाती है, और वो जहाँ सागर में मिलती है उसको कहते गंगा सागर। वहां पर बहुत बड़ा मेला लगता है कलकत्ता में, गंगा सागर, और उसको डायमंड हार्बर भी कहते हैं, जहाज आते हैं, बहुत बड़ा है। तो बाबा कहते हैं उनको उनका सागर से कनेक्शन है, उनका मेला बहुत बड़ा लगता है, यहाँ भी मेला लगता है। शिव बाबा के पास नदियां आती है तो मधुबन में भी मेला लगता है, यहाँ भी मेला लगता है। सागर और ब्रह्मपुत्रा दोनों कंबाइंड है, शिव बाबा सागर और ब्रह्मा ब्रह्मपुत्रा दोनों कंबाइंड है। ये है चैतन्य, वो है जड़, वो नदियां सागर सब जड़ है, और ये चैतन्य है सागर और नदी। ये है चैतन्य, वो है जड़, ये बातें बाप समझाते हैं, ये शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र है भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट, ये है ज्ञान मार्ग, वो है भक्ति मार्ग। आधा कल्प भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट चली है, उसमें ज्ञान सागर है नहीं, भक्ति के डिपार्टमेंट में ज्ञान सागर है नहीं। परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर, बाप संगम पर आकर ज्ञान स्नान से सबकी सदगति करते हैं। तुम जानते हो कि हम बेहद के बाप से स्वर्ग के सुखों की तकदीर बना रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? बेहद के बाप से स्वर्ग के सुखों की तकदीर बना रहे हैं। बरोबर हम सत्युग त्रेता में पूज्य देवी देवता थे, अभी हम पुजारी मनुष्य हैं, फिर मनुष्य से तुम देवता बनते हो, ब्राह्मण सो देवता धर्म में आए। अभी ब्राह्मण है फिर देवता धर्म में आए, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरना पड़ा। ये भी तुमको बाप ने बताया है कि कैसे 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरना पड़ा। ये बाप ने बताया है कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे। बाबा ने आकर हमारे जन्मों का राज बताया है। 84 जन्म भी तुम्ही लेते हो, जो पहले पहले आते हैं वो पूरे 84 जन्म लेते हैं। अब फिर बाबा योग, वापस याद की बात पर आते हैं, योग से ही खाद निकलती है, योग में ही मेहनत है। भले कई बच्चे ज्ञान में तीखे हैं, परंतु योग में कच्चे हैं। क्या सर्टिफिकेट दिया बाबा ने, ज्ञान में तो बहुत तीखे हैं पर योग में कच्चे हैं। बांधेलिया योग में छुटेलियों से भी अच्छी है। बांधेलिया ज्ञान में योग में, यहाँ योग में छुटेलियों से भी अच्छी है। वो तो शिव बाबा से मिलने के लिए रात दिन तड़पती है। तुम तो मिले हो, मिले हैं, बाबा के घर में ही बैठे हैं, तुम तो मिले हो। तुमको कहा जाता है कि याद करो, तुमको कहा जाता है याद करो, घर में बैठे ही हो परंतु याद में बैठो, याद में रहो, ये कहा जाता है। तो तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाबा कहते याद में रहो, और जो छुटेले हैं वो भूल जाते हैं बाबा को। तुमको तूफान बहुत आते हैं, बहुत आते हैं तूफान, वो तो याद में तड़पती है, तुम तड़पते नहीं हो। उनका घर बैठे भी ऊंच पद हो जाता है, घर बैठे हैं, बाबा को देखा नहीं है, मधुबन आई नहीं है कभी, लेकिन तड़पती है। उन लोगों का घर बैठे भी ऊंच पद हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो, बाबा की याद में रहने से हमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। जैसे बाबा ने क्या मिसाल दिया, जैसे बच्चा गर्भ से निकलने के लिए तड़पता है, तड़पता है, और ना माँ बताती है ना, अब वो बच्चा तैयार हो गया, वो निकलना है तो अपने टांगे वो पेट को मारता रहता है, तो माँ को पता चल जाता है, दर्द तो होता है ना माँ को भी, तो तड़पता है कि निकलो बाहर, निकलो बाहर। तो बाबा कहते हैं जैसे बच्चा गर्भ से निकलने के लिए तड़पता है, वैसे बांधेलियां तड़पते तड़पते पुकारती है, शिव बाबा इस बंधन से निकालो, मुक्त करो हमें। दिन रात याद करती है, तुमको तो बाप मिला है तो तुम अलबेले बन पड़े हो। हाँ, अलबेले बन पड़े हैं क्या, बाबा मिला है, तड़पन खत्म हो गई तो अलबेले बन जाते, याद नहीं करते, तो तुम अलबेले बन पड़े हो। हम बाबा के बच्चे हैं, बस यही समझते हैं। हम ये शरीर छोड़, कैसे याद करो, हम बाबा के बच्चे हैं, हम ये शरीर छोड़ जाए प्रिंस बनेंगे, वो भी याद रहे, हम ये शरीर छोड़ जाए प्रिंस बनेंगे। ये अंदर स्थाई खुशी रहनी चाहिए, जैसे ब्रह्मा बाबा को थी ये स्थाई खुशी थी, बाबा की याद तो थी लेकिन साथ साथ ये स्थाई खुशी भी थी, मैं ये जाकर मिचनू बनूंगा, श्री कृष्ण बनूंगा, श्री कृष्ण बनूंगा। तो बाबा कहते हम ये शरीर छोड़ जाए प्रिंस बनेंगे, ये अंदर स्थाई खुशी रहनी चाहिए, परंतु माया याद रखने नहीं देती। तो दोष किसका है, बच्चों का नहीं है, हाँ माया का है। और उस दिन बाबा ने मुरली क्या चलाई थी, बच्चे माया का दोष क्यों कहते हो, पुरुषार्थ की कमी है, और फिर कहते माया, हाँ माया रहने नहीं देती, परंतु माया याद रखने नहीं देती। याद से खुशी में बहुत रहेंगे, अगर याद है तो खुशी में बहुत रहेंगे, याद नहीं करेंगे तो घुटके खाते रहेंगे। आधा कल्प तुमने रावण राज्य में बहुत दुख देखा है, कितना दुख देखा होगा ना, दो युग तक दुख ही दुख देखा है, तो द्वापर कलयुग में आधा कल्प तुमने रावण राज्य में दुख देखा है, अकाले मृत्यु होता आया है, दुख तो है ही है। भल कितना भी कोई साहूकार हो, बहुत धनवान हो, दुख तो उसको भी होता है। ऐसे नहीं कि धनवान है इसलिए उसको दुख नहीं होगा, दुख तो उसको भी होता है। अकाली मृत्यु हो जाती है, अचानक बीमार पड़ गया और बस शरीर छोड़ दिया, अकाली मृत्यु हो जाती है। सतयुग में ऐसे अकाली मृत्यु नहीं मरते हैं, अकाले नहीं मरते हैं, कभी बीमारी नहीं होंगे। अकाले मरने की तो बात छोड़ो, बीमारी नहीं होंगे। समय पर बैठे बैठे आपे ही एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं, उसका नाम ही है सुखदाम। मनुष्य तो स्वर्ग की बातों को कल्पना समझते हैं। जब हम उनको ये बातें कहते हैं ना, कहते ऐसे कैसे होगा, ये सब तुम्हारी कल्पना है, तो कल्पना समझते हैं स्वर्ग की बातों को, कहेंगे स्वर्ग कहाँ से आया। तुम जानते हो हम तो स्वर्ग में रहने वाले हैं, स्वर्ग कहाँ से आया नहीं, हम तो स्वर्ग में रहने वाले हैं। फिर 84 जन्म लेते हैं, ये सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। तुम जानते हो हम 21 जन्म पावन देवता थे, हाँ पावन देवता थे दो युग तक, फिर हम 21 जन्म पावन देवता थे, फिर हम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब फिर ब्राह्मण बने हैं। ये स्वदर्शन चक्र बहुत सहज है, ये शिव बाबा बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा के रथ में आया है, जो ब्रह्मा है वही सतयुग आदि में श्री कृष्ण था। शिव बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा के बारे में सुनाते हैं, ये जो ब्रह्मा है वही सतयुग आदि में श्री कृष्ण था। 84 जन्म ले पतित बने हैं, फिर इनमें बाप ने प्रवेश कर एडॉप्ट किया है। खुद कहते हैं शिव बाबा, खुद कहते हैं कि मैंने इस तन का आधार ले तुमको अपना बनाया है। मैंने ही इस तन का आधार लिए आप तुमको अपना बनाया है, फिर तुमको स्वर्ग की राजधानी का लायक बनाता हूँ। जो लायक बनेंगे वही राजाई में आएंगे। अब इसमें मैनर्स अच्छे चाहिए, मैनर्स अच्छे माना गुण अच्छे चाहिए, तभी तो लायक कहलाएंगे, तभी तो राजाई में आएंगे। इसमें मैनर्स अच्छे चाहिए, मुख्य है ही, सबसे बड़ी बात मुख्य है ही पवित्रता, मुख्य है ही पवित्रता। इस पर ही अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, कहाँ कहाँ तो पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं। स्त्रियां विकारी बनना चाहती है और पुरुष नहीं बनना चाहते हैं, तो फिर स्त्रियां पुरुषों पर दबाव डालती है विकारी बनने के लिए। तो बाबा कहते कहाँ कहाँ पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं, और जो स्त्रियां अत्याचार करती है पुरुषों पर विकार के लिए, फिर उनके भी तो नाम है ना, शास्त्रों में बहुत नाम है, सूपनखा पूतना, ये सब स्त्रियां थी जो विकार के लिए। तो बाबा कहते हैं कहाँ कहाँ पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं, विकार के लिए एक दो को तंग करते हैं। यहाँ माताएं बहुत होने के कारण, बाबा के बच्चों में माताएं ज्यादा है ना, तो यहाँ माताएं बहुत होने के कारण शक्ति सेना नाम गाया हुआ है। वंदे मातरम ना, तो अभी नीचे कल मीटिंग में बहुत बातें चली वंदे मातरम की, तो क्योंकि आधी से ज्यादा संख्या तो फीमेल्स है ना इस संसार में, आधी से ज्यादा है 60% फीमेल है, 50-50 नहीं है मेल और फीमेल, 60% है। तो तो देखो आधी से भी ज्यादा दुनिया की आबादी नारी है, और तो नारी शक्ति वंदे मातरम, तो वंदे मातरम का ये गायन है भारत में, तो बहुत गायन है। तो फिर ये अंतर बताया कि जन गण मन जो है वो ये भारत का राष्ट्रगान है, और वंदे मातरम जो है वो राष्ट्र गीत है। तो गान और गीत दोनों में अंतर है। तो राष्ट्रगान है जन गण मन, परंतु वंदे मातरम राष्ट्र गीत है। तो वो भी आजकल भारत में काफी इसकी चर्चा है, तो वो भी हम लोगों ने ये थीम ली है जी। हाँ वो बंकिम, हाँ हाँ, उसके 150 साल हुए जिसने ये लिखा था वंदे मातरम, उसके 150 साल हुए। कलकत्ता के थे बंकिम, या हाँ, तो इसीलिए इस साल बहुत उसको महत्व दिया है वंदे मातरम को। तो बाबा कहते हैं वंदे मातरम, यहाँ माताएं बहुत होने के कारण शक्ति सेना नाम गाया हुआ है वंदे मातरम। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, काम चिता से उतर गोरे बनने के लिए। ज्ञान चिता पर बैठे हैं, काम चिता से उतर कर गोरे बनने के लिए। द्वापर से लेकर काम चिता पर बैठे हो, एक दो को विकार देने का हथियाला विकारी ब्राह्मण बांधते हैं। दुनिया में विकारी ब्राह्मण एक दो को विकार देने का वो हथियाला बांधते हैं। ज्ञान जैसे काम चिता पर बिठाने का हथियाला बांधते हैं, एक दो को विकार देने का हथियाला विकारी ब्राह्मण बांधते हैं। खुद ब्राह्मण भी तो विकारी होंगे ना। तो तुम वो निर्विकारी ब्राह्मण, तुम वो कैंसिल कराए, वो कैंसिल कराए ज्ञान चिता पर बिठाते हो। काम चिता से तो काले बने हैं और ज्ञान चिता से गोरे बन जाएंगे। तो बाप कहते हैं भल इकट्ठे रहो, परंतु प्रतिज्ञा करनी है कि हम विकार में नहीं जाएंगे। कल इस पर भी बात हुई थी कि कैसे अभी बड़ा संत सम्मेलन करने का ओआरसी में, हाँ ओआरसी में संत सम्मेलन करना है, और उसमें अनेक संतों को बुलाएंगे, और फिर खास जो युगल है जो घर गृहस्थ में रह करके पवित्र रहते हैं उनको बुलाएंगे। तो कम से कम 100 ऐसे 100 युगलों को बुलाएंगे, और उनको दिखाएंगे, बताएंगे सन्यासियों को कि कैसे ये घर गृहस्थ में रहकर पवित्र रह सकते हैं। तो देखो रहते हैं और रह सकते हैं, तो एग्जाम्पल है हमारे सामने। तो वो भी मानेंगे कि बरोबर ये संस्था कितनी महान है। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं भल इकट्ठे रहो, परंतु प्रतिज्ञा करनी है कि हम विकार में नहीं जाएंगे। इसीलिए बाबा अंगूठी भी पहनाते, बाबा उनको अंगूठी पहनाते थे। शिव बाबा बाबा भी है, साजन भी है, सभी सीताओं का राम है, वही पति पावन है। बाकी रघुपति राघव राजा राम की बात नहीं, वो राजा राम तो रघुपति राघव राजा राम था। रघुकुल रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर प्राण न जाए वचन न जाए। तो बाबा कहते वो तो रघुकुल का राजा था, बाकी रघुपति राघव राजा राम की बात नहीं है। उसने संगम पर ही आकर के ये प्रलब्ध पाई है। रघुपति राघव राजा राम ने भी संगम पर ही वो जो त्रेता युग की राजाई मिली वो संगम से ही पाई है, संगम पर ही। तो बाबा कहते हैं उनका उनको फिर हिंसक बाण दिखाना रॉन्ग है। वास्तव में बाण दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि हिंसा तो की नहीं है श्री राम ने, परंतु संगम पर वो माया से युद्ध करते करते शरीर छोड़ा, संपूर्ण नहीं बना, इसीलिए फिर बाण दिखाया। और श्री कृष्ण की आत्मा तो संपूर्ण बनी, इसलिए उनको बांसुरी दिखाई है, कोई हिंसा की बात ही नहीं। तो बाबा कहते हैं उनको हिंसक बाण, श्री राम को हिंसक बाण दिखाना रॉन्ग है, चित्र में भी नहीं देना चाहिए। परंतु अगर हम नहीं देंगे चित्र में श्री राम को बाण तो लोग समझेंगे नहीं, नहीं इसीलिए दिखाना पड़ता है उनको भी तीर कमान। तो बाबा कहते हैं चित्र में भी नहीं देना चाहिए, सिर्फ लिखना चाहिए चंद्रवंशी। तो बच्चों को समझाना चाहिए शिव बाबा इस द्वारा हमको ये चक्र का राज समझा रहे हैं, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको चक्र का राज समझा रहे हैं। सत्य नारायण की कथा होती है ना, वो है मनुष्यों की बनाई हुई कथा, नर से नारायण तो कोई बनते नहीं है, कथा ही सुनाते रहते हैं पर नर से नारायण तो कोई बनते नहीं है। सत्य नारायण की कथा का अर्थ ही है नर से नारायण बनना, क्योंकि उस कथा में दिखा है ना, पहले धनवान था फिर कंगाल बना, कंगाल से फिर धनवान बना, बस यही सत्य नारायण की कथा बताई। तो सत्य नारायण की कथा का अर्थ ही है नर से नारायण बनना। अमर कथा भी सुनाते हैं परंतु अमरपुरी में तो कोई जाते नहीं है, मृत्यु लोक 2500 वर्ष चलता है, तीजरी की कथा माताएं सुनती है, तीज की कथा खास आती है, तीज को बहुत मानती है माताएं। वास्तव में ये है तीसरा ज्ञान का नेत्र देने की कथा। अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को मिला है तो आत्म अभिमानी बनना है, मैं इस शरीर द्वारा अब देवता बनती हूँ, मेरे में ही संस्कार है, मनुष्य सब देह अभिमानी है, बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। लोग फिर कह देते हैं अब सब आत्माएं देह अभिमान में है, बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं, और लोग क्या कहते हैं कि आत्मा परमात्मा एक ही है, परमात्मा ने ये सब रूप धारण किए हैं, सारे रूप परमात्मा के ही हैं। बाप कहते ये तो सब रॉन्ग है, आत्माएं देह अभिमान में आ गई फिर बाबा आकर के उनको देही अभिमानी बनाते हैं, ऐसे कैसे कह देंगे आत्मा परमात्मा एक ही है, परमात्मा ने ये सारे रूप धारण किए। तो बाबा कहते हैं ये सब रॉन्ग हो जाता, इसको मिथ्या अभिमान मिथ्या ज्ञान कहा जाता है, आत्मा सो परमात्मा, बाबा कहते ये मिथ्या ज्ञान है, आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकती है। बाप बतलाते हैं मैं बिंदी मिसल हूँ, तुम भी नहीं जानते थे हम मैं आत्मा हूँ मैं बिंदी मिसल हूँ, हम जानते थे क्या, कुछ भी नहीं, ये भी नहीं जानता था, ब्रह्मा बाबा को भी नहीं पता था कि मैं आत्मा हूँ मैं बिंदी मिसल हूँ। अभी बाप समझाते हैं इसमें संशय नहीं आना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, बाबा जरूर सत्य ही बोलते हैं, संशय बुद्धि तो विनश्यन्ति, हाँ संशय रखा, बाबा कहते आत्मा बिंदी, बिंदी कैसे हो सकती है, तो संशय उठाते हैं, बाबा कहते संशय बुद्धि विनश्यन्ति, ये पूरा वर्षा नहीं पाएंगे जो ऐसे संशय रखते हैं बाबा जो सुनाते उस पर, तो ये पूरा वर्षा नहीं पाएंगे, आत्म अभिमानी बनने में ही मेहनत है, खाना पकाते बुद्धि बाप के तरफ लगी रहे, हर बात में ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। हाँ माताएं, बाबा कहते हैं रोटी बेलते अपने माशूक को याद करते रहना, है ना माताएं रोटी बेलती ना, सुबह को भी बेलती है दिन में भी शाम को भी, तो रोटी बेलते बेलते आत्मा शिव बाबा शिव माशूक को याद करते रहना है, ये अभ्यास हर बात में चाहिए, खाली रोटी बेलते नहीं, हर बात में ये अभ्यास चाहिए, जितना समय फुर्सत मिले याद करना है, याद से ही तुम सतोप्रधान बनेंगे। ऐसे तो नहीं माता या शिव बाबा को याद करके रोटी बनाते हैं तो वो गोल की बजाय वो भारत का नक्शा बन जाएगा, ऐसे तो नहीं होता ना, हाँ बाबा की याद में गोल ही बनेगा ना रोटी। तो बाबा कहते हैं जितना समय फुर्सत मिले याद करना है, याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे, 8 घंटा कर्म के लिए छुट्टी है, बीच में भी एकांत में जाकर बैठना चाहिए। तुम्हें सबको बाप का परिचय भी सुनाना है, आज नहीं सुनेंगे तो कल सुनेंगे। देते रहो परिचय। बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं, हम स्वर्ग में थे अभी फिर नरकवासी बने हैं। अब फिर बाप से वर्षा मिलना चाहिए, भारतवासियों को ही समझाते हैं, बाप आते भी भारत में ही है। देखो तुम्हारे पास मुसलमान लोग भी बहुत आते हैं, है ना। एक सेंटर है जहाँ बहन है वो लौकिक, वो मुस्लिम है लेकिन बाबा की पक्की बच्ची, सेंटर भी संभालती है, ऐसे भी है। तो देखो तुम्हारे पास मुसलमान लोग भी आते हैं, वो भी सेंटर संभालते हैं। कहते हैं शिव बाबा को याद करो, वो भी कहती है शिव बाबा को याद करो। सिख भी आते हैं, क्रिश्चियंस भी आते हैं, आगे चल करके और भी बहुत आएंगे। यह ज्ञान सबके लिए है क्योंकि ये है ही सहज याद और सहज वर्षा बाप का। सहज याद, सहज वर्षा बाप का, तो आएंगे, बहुत आएंगे। परंतु पवित्र तो जरूर बनना पड़े, भले वो किसी भी धर्म को मानता हो, किसी भी परिवार में जन्म लिया हो, धर्म में जन्म लिया हो, लेकिन बाबा का बने माना शिव बाबा को याद जरूर करना पड़े और पवित्र भी बनना पड़े। दे दान तो छूटे ग्रहण, अभी भारत पर राहु का ग्रहण है, फिर बृहस्पति की दशा शुरू होगी। कितना समय चलेगी बृहस्पति की दशा? बाबा कहते हैं बृहस्पति की दशा शुरू होगी, 21 जन्मों के लिए चलेगी बृहस्पति की दशा। पहले होती है बृहस्पति की दशा, फिर शुक्र की दशा भी बैठती है। तो सूर्यवंशियों पर है बृहस्पति की दशा, फिर बाबा कहते हैं चंद्रवंशियों पर शुक्र की दशा कहेंगे। थोड़ी कम हो जाती है ना, बृहस्पति तो बहुत ऊंची दशा है, शुक्र की दशा थोड़ी कम है, तो चंद्रवंशियों को शुक्र की दशा कहेंगे। फिर दशा कमती होती होती कलयुग में कौन सी दशा है? राहु की दशा। कलयुग में फिर दशा कमती होती जाती है, सबसे खराब है राहु की दशा। बृहस्पति कोई गुरु नहीं होता है, बृहस्पति कोई गुरु नहीं होता, ये दशा है वृक्षपति की। बृहस्पति की दशा, वो जो ग्रह दिखाते हैं वो कोई गुरु नहीं है, परंतु जुपिटर कहते हैं इंग्लिश में, तो वो कोई गुरु नहीं है, ये दशा है वृक्षपति की। वृक्षपति बाप आते हैं तो बृहस्पति और शुक्र की दशा होती है, और रावण आता है तो राहु की दशा हो जाती है। बाप आते हैं तो बृहस्पति और शुक्र की दशा होती है, और रावण आता है तो राहु की दशा हो जाती है। तुम बच्चों पर अभी बृहस्पति की दशा बैठती है, सिर्फ क्या करो उसके लिए, वृक्षपति की दशा बैठे बृहस्पति की दशा, उसके लिए क्या करो, सिर्फ वृक्षपति को याद करो बस। तो वृक्षपति को याद करो तो बृहस्पति की दशा बैठेगी, पवित्र बनो बस। वृक्षपति को याद करो और पवित्र बनो तो बृहस्पति की दशा बैठेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, हर कार्य करते हुए आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। हर कार्य करते हुए आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है, देह का अहंकार समाप्त हो जाए, इसके लिए ही मेहनत करनी है। देह का अहंकार समाप्त हो जाए, इसके लिए ही मेहनत करनी है। दूसरा, सतयुगी राजाई के लायक बनने के लिए क्या करना होगा, अपने मैनर्स रॉयल बनाने हैं, सतयुगी राजाई के लायक बनने के लिए अपने मैनर्स रॉयल बनाने हैं। पवित्रता ही सबसे ऊंची चलन है, सबसे ऊंची चलन पवित्रता ही है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। वरदान, करम करावन हार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। करण करावन हार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। कोई भी कार्य करते यही स्मृति रहे, कोई भी कार्य करते यही स्मृति रहे कि इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है, किसने मुझे निमित्त बनाया ये कार्य करने के लिए। बैकबोन, रीढ़ की हड्डी होती है ना, तो उसके बिना तो शरीर खड़ा ही नहीं हो सकेगा, तो इसीलिए वो बैकबोन कौन है जो हमारे साथ खड़ा है, हमें कार्य करने में शक्ति देता है। तो इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है, बिना बैकबोन के कोई भी कर्म में सफलता नहीं मिल सकती है। इसलिए कोई भी कार्य करते सिर्फ ये सोचो, मैं निमित्त हूँ, कराने वाला स्वयं सर्वसमर्थ बाप है, ये स्मृति में रख कर्म करो तो क्या होगा, तो सहज योग की अनुभूति होती रहेगी। फिर ये सहज योग वहाँ सहज राज्य कराएगा, यहाँ सहज योग, फिर वो ये सहज योग वहाँ सहज राज्य कराएगा, यहाँ के संस्कार वहाँ ले जाएंगे। स्लोगन, इच्छाएं क्या है, इच्छाएं परछाई के समान है, आप पीठ कर दो तो पीछे पीछे आएगी। परछाई अगर आगे होगी, सूरज पीछे होगा, परछाई आगे, तो परछाई लंबी लंबी होती जाएगी, और परछाई को पीठ कर दे दो और सूर्य की ओर जाओ, रोशनी की ओर, परछाई छोटी छोटी होती जाएगी, और रोशनी के आगे पहुंचे, परछाई आप में समा जाएगी, परछाई खत्म। तो बाबा कहते हैं इच्छाएं परछाई के समान है, आप पीठ कर दो तो वो पीछे पीछे आएगी। ये अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो के अंतर्गत, मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरणी को भी मधुर बना देती है। धरणी कड़वी है, लोग भी कड़वे हैं, लेकिन आप मीठे हो बनो तो बाबा कहते वो कड़वी धरणी भी मधुर बना देगी। आप सभी को बदलने का आधार, आप सभी को बदलने का आधार बाप के दो मधुर बोल है। वो भले कड़वे हो पर आप दो मधुर बोल बोलो तो आप सभी के बदलने का आधार बन जाएंगे। तो आप सभी को बदलने का आधार बाप के दो मधुर बोल है। मीठे बच्चे, तुम मीठी शुद्ध आत्मा हो। बाबा हमें क्या कहते हैं, मीठे बच्चे तो मीठी शुद्ध आत्मा हो। इन दो मधुर बोल ने तो बदल दिया, बाबा ने हमें मीठे बच्चे का तो हमारा जीवन ही बदल गया। तो इन दो मधुर बोल ने ही बदल दिया, मीठी दृष्टि ने बदल दिया, ऐसे ही मधुरता द्वारा औरों को भी मधुर बनाओ। ये मुख मीठा करो, यही है मुख मीठा करना, मुख से मधुर बोल निकले। सदा इस मधुरता की सौगात को साथ रखो, इसी से सदा मीठा रहेंगे और मीठा बनाएंगे, मीठा रहेंगे और मीठा बनाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी जानते हैं कल कौन सा दिन है, कल 8 तारीख है, और 8 तारीख दादी रतन मोहिनी जी का रतन मोहिनी जी की पहली पुण्य स्मृति दिवस है। तो कल राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी की प्रथम पुण्य स्मृति दिवस पर शांतिवन में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। तो सवेरे तो वहाँ मुरली होगी, फिर मुरली के बाद 8:15 बजे सभी बाहर आएंगे ज्ञान रत्न स्तंभ, जो दादी प्रकाशमणि ट्रेनिंग सेंटर में जो लास्ट में दादी रतन मोहिनी जी का मकान था उसके सामने ज्ञान रत्न स्तंभ बना है जहाँ दादी रतन मोहिनी जी की समाधि है। तो ज्ञान रत्न स्तंभ ये नाम रखा है। पर सभी वरिष्ठ दादियाँ एवं भाई दादी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, रतन मोहिनी दादी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और गीत भी होगा, हरीश मोहल जी द्वारा गीत होगा ज्ञान रतन स्तंभ पर। फिर पुष्पांजलि दी जाएगी वरिष्ठ भाई बहनों के द्वारा और आमंत्रित सभी भाई बहने दादी जी के कमरे में जाएंगे, रतन मोहिनी दादी जी के कमरे में जाएंगे, दादी जी के संग के संस्मरण 2-2 मिनट सुनाएंगे आमंत्रित भाई बहने। फिर मुन्नी दीदी जी जयंती दीदी करुणा भाई जी थोड़ा सुनाएंगे। फिर सुबह मुरली क्लास के बाद पांडव भवन और ज्ञान सरोवर में दादी जी के निमित्त भोग लगेगा, क्योंकि दिन में जो भोग है वो बाद में लगेगा नीचे, लेकिन पांडव भवन और ज्ञान सरोवर में सवेरे ही मुरली के बाद यहाँ भोग लगेगा। और फिर 10 बजे से डायमंड हॉल में सब एकत्रित होंगे, जो मीटिंग में आए हुए हैं वो तो सब होंगे भी, बाकी भी सब एकत्रित होंगे और दादी जी के संस्मरण सुनाएंगे जिसमें जयंती दीदी करुणा भाई मुन्नी दीदी मोहिनी दीदी दादी जी के संस्मरण सुनाएंगे रतन मोहिनी दादी जी के। और 11:30 बजे 100 साल की कहानी की डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाएंगे, रतन मोहिनी दादी जी ने 100 साल की उम्र में अपना देह त्याग किया, तो वो 100 साल की कहानी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है 15 मिनट की, वो दिखाएंगे। फिर 11:45 100 साल की कहानी दादी रतन मोहिनी जी का किताब बनाया है उसका विमोचन होगा। फिर 11:50 को बाप दादा तथा दादी रतन मोहिनी जी को मोहिनी दीदी जी भोग लगाएंगे, तत्पश्चात संदेश सुनाएंगे और भोग का गीत मधुर वाणी और युग रतन भाई के द्वारा होगा। संदेश सुनने के बाद सभी डाइनिंग हॉल में भोजन के लिए जाएंगे, पांडव भवन और ज्ञान सरोवर में भी ब्रह्मा भोजन रहेगा, वो ब्रह्मा भोजन भी बताया। फिर शाम को 5:30 से 6 बजे तक योग होगा कॉन्फ्रेंस हॉल में और 6 से 7:30 बजे तक दादी जी के साथ के संस्मरण सुनाएंगे, कॉन्फ्रेंस हॉल में होगा। अच्छा, कोऑर्डिनेटर्स होंगी मनोरमा दीदी। ओम शांति, ये कल का प्रोग्राम होगा। अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे, तो कल यहाँ भोग लगेगा, कल बुधवार है तो कल भी भोग लगेगा, परसों गुरुवार है तो परसों भी भोग लगेगा यहाँ। ओम शांति।